अगला बाप देखते हैं, बाप नंबर 10, मिन दीन इल फरारु मिन अल फितन, फितनों से फरार दीन का हिस्सा। समझ लीजिएगा, मिन दीन, दीन में से है ये बात, यानी किसी शख्स की दीनदारी है। क्या? अल फिरारु मिन अल फितन, फितनों से भागे। सवाल पैदा होता है, फितना क्या है? फितने से मुराद हर वो चीज जिससे इंसान गुमराह हो जाए और अल्लाह के जिक्र और उसकी इताअत से गाफिल हो जाए। ठीक है, बस आप देखिए, माल फितना, औलाद फितना, दौलत ऐसी जो हराम से है फितना, और आज हमारे इस दौर में तो फितनों का हजूम है जो गुमराही और बेदीनी की तरफ इंसान को ले जाती है। ऐसे दौर में तो अगर दुनिया में आप अपडेटेड रहें तो कितने फितने आपको लेने पड़ते हैं। कई जगह हराम में इंडल्ज होना पड़ता है, कई जगह इंटरेस्ट और सूद के निजाम में आपको घुसना ही पड़ता है क्योंकि आप ऐसे वक्त में ऐसे जगहों में रहते हैं। तो ऐसे हालात में फिर गोशे तन्हाई इख्तियार करना जायज है। अगर दुनिया के दजल से निकलना है तो फिर इंसान अपने अंदर हिम्मत पैदा करे, और जिसको कहते हैं ऑपोजिट द टाइड, ऑपोजिट चलना पड़ता है। मुआशरा एक तरफ चल रहा है तो आप दूसरी तरफ चल रहे हैं। हदीस देख लेते हैं, अन अबी सईदिल खुदरी रदी अल्लाह अन्हो अन्नहु काल, यानी हजरत अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम। यूशिकु कहते हैं अन करीब वो वक्त आएगा, यानी जिसको आप कहते हैं ना सून विल बी, यानी वो जमाना करीब है। क्या? अन यकूना, ये के हो, खैरु मालिल मुस्लिमी, मुसलमान का बेहतरीन माल, गनमुन बकरियां, गनम बकरी को कहते हैं, इसी से लफ्ज गनीमत भी है, क्योंकि जंगों में अमूमन पहले दौर में बकरियां ही मिलती थी, फिर दुश्मन से हासिल होने वाली हर चीज इसमें शामिल हो गई। क्या करेगा इन बकरियों को लेकर? यत बहुबीहा, निकल जाएगा इनके साथ, शाफल जिबाली, पहाड़ों की चोटियों की तरफ, यानी दुनियादारी के झंझटों में पड़ के कारोबार करें तो ना फरमानी है, जॉब करें वो नहीं, आज ये नहीं, तो वो चंद बकरियां लेगा, पहाड़ों की चोटियों पे पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ वह मवाकिल कतर, और बारिश के मुकामात की तरफ निकल जाएगा। मुराद है कि जहां खुद ब खुद सब्जा भी होगा और बकरियां चर चुक के दूध देंगी और वो अपनी जरूरियात पूरी कर लेगा। या फिर रुबिदीन ही मिनल फितन, भागेगा वो, या फिर रुके फरार इसी से, दीन ही अपने दीन को लेकर, यानी अपने दीन को बचाकर फितनों से भाग जाएगा। और आपको आज के हालात कुछ इस किस्म के होते हुए दिख रहे होंगे। बाजार देखने में वो लोग जो बहुत अपडेटेड जिंदगी बसर करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके पास बेचारों के बहुत सारे मसाइल है, कहीं गवर्नमेंट की मजबूरी है। बस आप देखिए, चलिए हम कोई बात नहीं करते, सिर्फ हम व्हीकल्स इंश्योरेंस को अगर सामने रख लें, गाड़ी रखनी है तो आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, और इंश्योरेंस कह लें उसको, उसको गैम्बलिंग कह लें, उसको जुआ कह लें, रिस्क कह लें, चांस कह लें, करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं रख सकते आप उसके बगैर। आप कहते हैं अच्छा जी, ये बुरी बात है? ऑफ कोर्स बुरी बात है, जब आपने एक्सीडेंट किया तो आप जिम्मेदार है। आप सारा साल पैसे देते रहे, एक्सीडेंट हुआ नहीं, आपकी मनी जाया हो गई। तो बहरहाल इस पर एक लंबा चौड़ा टॉपिक मौजूद है, लेकिन यहाँ सिर्फ इशारा देना मकसूद है। आप रोते करें, धोते करें, मजबूर कहो, करना तो पड़ेगा ना, जो लोग कर रहे हैं तो फितना है ना उनके लिए। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होता कहता नहीं गाड़ी तो ना सही, मैं किराए की ले लूंगा। किराए की गाड़ी पे आपको इंश्योरेंस खुद नहीं लेनी पड़ती, जो लेता है उसकी मर्जी, मैं लोकल बस पे चला जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। लेकिन सारे तो नहीं ऐसा कर सकते, बच्चों वाले, जॉब्स वाले, दूर नजदीक जाने वाले, तो ये है मुराद इससे। और हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि सूद का गुबार हर एक को पहुंचेगा, चाहे कोई बचे तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जाएगा। तो ये इस तरह के फितने हैं जिसका जिक्र है। मैं और आप क्या करें, अपने आप को बचाएं, दुआएं मांगे फितनों से बचने की, अपनी जिंदगी को आसान करें, सादगी पे लाएं, लीस्ट मिनिमम, बेर मिनिमम पे रहें, मत अपने आप को अपडेटेड रखें, और हमेशा अल्टरनेट ढूंढें। अल्लाह ताला ने हर मुश्किल से निकलने का रास्ता रखा है, जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आसानी करेगा। दुआ कर लें अपने लिए कि अल्लाह मेरे लिए दीन और दुनिया के फितनों को आसान कर दे और मुझे दीन पे रखना। अगला बाप है, बाप कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना आलमु कुम बिल्ला, टॉपिक का नाम भी एक बहुत बाहिकमत होता है। इससे भी इमाम बुखारी की फरासत का पता चलता है कि अल्लाह के नबी का ये कॉल कि मैं तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ अल्लाह के बारे में, और क्यों ना जाने, वही आती थी, अल्लाह से मोहब्बत थी। क्या मुराद है, आइए जरा इसको देखते हैं। अनायशत रदी अल्लाह अन्हा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा अमरहुम, जब अल्लाह के नबी हुक्म देते इनको किसी काम का, यानी सहाबा को जब कोई हुक्म देते तो किसका हुक्म देते, अमरहुम मिनल आमाली बिमा युतीकून, हुक्म देते उनको उन कामों का जिसकी वो ताकत रखते थे। युतीक उनके अताक यतीक उसे, सूरह बकरा में हमने रोजे के ताल्लुक में पढ़ चुके हैं ये लफ्ज, युतीकूना बिफिदिया, फिदिया दे दें, ठीक है। तो यानी जो इसकी ताकत रखते थे वो अल्लाह के नबी काम कहते थे। कालू, वो कहते, यानी उन्होंने ये सवाल किया अल्लाह के नबी से, इन्ना लसना कहयतिक, हमारा हाल नहीं है आप जैसे, लसना वही जैसे लस्तु लैसा, ठीक है। कहा मैंने मानिद, हैया कहते हैं हैयत को, उर्दू में भी बोलते हैं ना आपके जैसे, और कहा तेरे लिए। देखिए अब ये लफ्ज को हाईलाइट कर ले, ये मुश्किल लफ्ज लगे, दो काफ आ रहे हैं, पहले काफ का मानी है मानिद का मसल लजिस्तौकद नारन जैसे, ठीक है, फिर अंदर है हैयत और आखिर में कहा तेरी तू तुझे, ठीक है। तो हमारा हाल आप जैसा नहीं है अल्लाह के नबी, मुराद ये कि आप ज्यादा आला दर्जे पे, हम ऐसे नहीं हैं। इन अल्लाह कद गफर लक मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख्खर, अल्लाह ने तो आपके हर अगले पिछले गुनाह को, गलती को, कोताही को माफ कर दिया। फयग़दबु हत्ता युरफ़ल ग़दबु फी वजही, ये बात सुनकर अल्लाह के नबी नाराज हुए कि गजब के निशान आपके चेहरे पे जाहिर हो गए, पहचानना जा रहा था कि आप गुस्से में, और पता चल जाता है इंसान गुस्से में जब। सुम्म यकूलू, फिर आपने फरमाया, अब ये हैं मतन के अल्फाज, इन अतकाकुम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, अतका मुत्तकी से अफ़लु तफ़दील है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा परहेजगार। वालमकुम बिल्लाही अना, और मैं सबसे ज्यादा जानता हूं अल्लाह के बारे में तुम्हारी निस्बत। मतलब क्या है इस हदीस को समझिए कि जब अल्लाह के नबी ने सहाबा को आसान काम बताए तो सहाबा का ख्याल ये था कि हमें मुश्किल काम बताएं, तो अल्लाह के नबी को पता था कि आज शौक में पूछ लेंगे, कल कर नहीं सकेंगे। यहाँ से कमल की बात भी मिलती है कि अच्छा लीडर वो होता है जो अपने कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं और उनके जो सब कोऑर्डिनेट हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल काम ना दे। मतलब जैसे आप स्टूडेंट्स को मुश्किल असाइनमेंट्स ना दें, मुश्किल काम ना दें। लेकिन याद रखिए कि इंसान के जिस्म में इलास्टिसिटी है, वो बर्दाश्त कर ही लेता है, ठीक है। इसलिए कि ये बात ऐसी है कि जितना अपने ऊपर बोझ डालेंगे उतना बोझ उठाने की आदत हो जाएगी। तो आसान कामों को देते थे, तो सहाबा कहते थे मुश्किल दीजिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम नहीं कर सकोगे। उन्होंने आगे से कहा होगा जी आप भी तो करते हैं, तो आपने कहा कि जो मैं करता हूँ या जिसकी ताकत मेरे अंदर है वो तुम्हें नहीं पता। मतलब क्या है इस सारी बात से कि आसान कामों को रफ़ दरजात और गुनाहों की माफ़ी के लिए ना काफ़ी ख्याल किया सहाबा ने। आज भी बात सिर्फ हम छोटी छोटी नेकियां जो बहुत दर्जे देने वाली होती हैं हम उसको नाकाफी समझते हैं, हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, और बड़े बड़े काम, एक टांग पे खड़े होने वाले वजीफे और इस तरह की बातें करें बहुत खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो सिर्फ एक छोटी सी गोली देते तो हम कहते हैं इससे क्या सेहत होनी है, और इसके बर्क जो बहुत सारी दवाइयां दें हम बड़े खुश होते हैं। तो शरीयत अल्लाह ने बनाई है, थोड़ा भी करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अब आप देखिए कि इस हदीस को किताबुल ईमान या ईमानियात के बाब में लाने वाली क्या बात है, तो यहाँ से आपको ये बात पता चलेगा कि अमल भी ईमान का हिस्सा है। ये सारी बातें अमलुस सालेहात में आ रही हैं जितनी आप ऊपर भी पढ़ रहे हैं। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया आसान है, लेकिन अब इन आमाल के जरिए से साबित भी तो करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बहुत जरूरी है, हम सब अपना इसमें जायजा ले सकते हैं किस तरह से ये हमारे मामलात को सामने लेकर आते हैं, और आप देखेंगे कि ये चीजें हम सबको अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत के करीब भी कर देती हैं। अपने लिए कोई अच्छी सी बात सोचिए, कोई ऐसा काम जिसको करने के बाद मैं अल्लाह का कुर्ब महसूस करूं, उसको करूंगी। कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला आसानी करेगा। अगला बाप है, बाप तफादलु अहले ईमान फिल आमाल, अहले ईमान का एक दूसरे से अफजल होना आमाल के एतबार से। तफादलु वही है जिसको फदल कहते हैं, तफद्दल, ठीक है, फजीलत भी इसी से ही है कि कैसे ईमान वाले अपने अमाल की वजह से एक दूसरे से अफसल हो जाते हैं। अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल, गोया कि ये कौली हदीस है जो हजरत अबू सईद खुदरी से मिलती है। मतन के अल्फाज, यदखुलु अहलु जन्नत अल जन्नत, दाखिल किए जाएंगे या दाखिल हो जाएंगे अहले जन्नत जन्नत में, वाहलु नार इन्नार, और दोजख वाले आग वाले आग में। ثم يقول الله تعالى, फिर फरमाएगा अल्लाह ताला, अखरिजो, निकालो, किसको, मन का नफी कल्बी ही, उसको कि था जिसके दिल में, मिसकाल हब्बतिन, बराबर एक दाने के, मिन खरदलिन, राई के, राई देखती होगी ना छोटी सी काले रंग की होती है, राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में, मिन ईमानिन, ईमान होगा। फिर क्या होगा इस बात को सुन के, फयुखरजून मिन्हा, फिर उनको वहां से निकाला जाएगा। हाल क्या हो चुका होगा उनका, कदिस वद्दू, अस्वद का लफ्ज़ असल में अगर कद को अलग पढ़ेंगे ना, कद तहकीक उस वद्दू, स्याह हो चुके होंगे, जहन्नम की आग उनको स्याह कर चुकी होगी। अब लोग इस पे तो नजर रखते हैं, अच्छा भी ईमान वाले आखिर में तो निकाले जाएंगे, लेकिन इस लफ्ज को देखें ना, उस वद्दू, अस्वद भी बहुत बड़ा लफ्ज है लेकिन उस वद उससे भी ऑपोजिट, उससे भी हैवी, काले से होंगे, तो ऐसे काले हो जाएंगे, जल के काले होंगे ना। फयुल्कौन फी नहरिल हयात, फिर उनको जिंदगी की नहर में डाला जाएगा, या फिर अविल हयात, दो लफ्ज हैं। देखिए यहां हदीस बयान करने वाले इतनी सच्चाई से काम लेते थे कि जो लफ्ज नहीं समझ आया, पता नहीं हया था या हयात था, तो इसलिए ये दोनों ही लफ्ज मिलते हैं कि जन्नत के बाहर एक नहर है जिसको नहर हयात कहते हैं और कुछ कहते हैं नहर हया, रूट दोनों का एक ही है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हो, शक्कुर मालिकुन, मालिक को शक है, मालिक कौन है जिन्होंने ये रिवायत बयान की। फिर क्या होगा, फयम बुतूना, फिर वो उगाए जाएंगे, कमा तम बुतुल हिब्बतु फी जानिब सैल, जैसे के उगता है दाना दरिया के किनारे, सैलाब, सैल सैलाब से, यानी जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है तो उसके किनारे पे खुद बहुत कुछ दाने उग जाते हैं ना, मुरादिया के जन्नतियों के जिस्म फिर उगेंगे। अलम तर अन्नह तखरुजु सफरा मुलतवीयतन, क्या तू नहीं देखता वो कैसे जर्द जर्द लिपटा हुआ नमूदार होता है, ये जो सफरा है ना ये जर्द है, कहते हैं कि जब दाना निकलता है तो क्या तू देखता नहीं है कि ये बिल्कुल जर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग बदलते हैं। पता क्या चला, असल इस हदीस का जो पेन पॉइंट है ना, हब्बतिन मिन हरदलिन मिन अल ईमान, ईमान इतनी कीमती चीज है कि एक दाने के बराबर भी होगा तो इंसान को जहन्नम से निकलवा दिया जाएगा। लेकिन फिक्र क्या है, ये खुशी नहीं जहन्नम से निकल जाएंगे, क्योंकि गम यह है कि हाय जहन्नम में डाले जाएंगे ईमान के बाद। तो गलत फहमी का इजाला कर लें कि ईमान हमें फायर प्रूफ बना देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह चाहे माफ कर दे, अल्लाह चाहे सजा दे के माफ करे, पाक करे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ईमान बढ़ा दे, कोई ऐसा काम हमसे दुनिया में ना हो जिसकी सजा में हम जहन्नम में डाले जाए। अल्लाह दुनिया में पाक साफ कर दे, और आप देखेंगे कि ये काम आसान तब होता है जब अल्लाह से भी मोहब्बत हो और उसके अजाबों की पकड़ का खौफ हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, अमल की हम सबको तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।